ओम शांति। सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। कल भी प्यारे बाप दादा ने इसी प्योरिटी की पर्सनालिटी के बारे में इशारा किया है। क्या है ये प्योरिटी की पर्सनालिटी? किस तरह इस पवित्रता को हम जीवन में उतार सकते हैं? आइए इस पवित्रता की परिभाषा पर कुछ विचार बिंदु प्राप्त करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति। कल ही बाप दादा ने विशेष पवित्रता की परिभाषा बताई है ना? तो खास करके बाबा ने कि संपूर्ण पवित्रता किसको कहते हैं? दृष्टि, वृत्ति, कर्म ये भी बताया, उसमें भी संपूर्ण पवित्रता किसको कहते हैं? संपूर्ण पवित्रता वो है हर एक आत्मा के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना ही संपूर्ण पवित्रता है। अब प्रश्न आता है कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना क्या है और शुभ कामना क्या चीज है? ये तो बाबा ने डिफरेंस भी कराया है कि ब्रह्मचार्य रहना संपूर्ण पवित्रता नहीं, ब्रह्माचारी चाहिए। तो शुभ भावना कब आएंगे हमारे अंदर? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को देखते, बहन जी को देखते बहन जी कहेंगे ना, भाई जी तो नहीं कहेंगे। भाई जी को देखते तो भाई जी कहेंगे ना, फिर ये भाई कौन है? हाँ, वो ये व्यक्ति है, देखो 10 साल पहले कितना गुस्सा किया, याद नहीं रहेगा? याद तो रहेगा, पता है ये कौन है। फिर उसके पीछे वो कौन है वो भी स्मृति हमें है, इसने ये कहा था, इसने ये किया था। देखते एक सेकंड के अंदर स्मृति का स्विच ऑन हो जाता है। तो इसलिए किसी को देखते ही भाई जी को देखते बहन जी तो नहीं कहेंगे ना, है ना? वो हमारे अंदर मेमोरी भरी हुई है, बुद्धि के अंदर ये स्मृति भरी हुई है बहुत समय से, आधा कल्प से भरी हुई है। इसलिए किसी ने कुछ कहा ये कहना चाहिए, तो ये पहले से बुद्धि के अंदर स्मृति है, रिकॉर्डिंग है। अभी ये चाहिए कि किसी को देखते हमारे मन में शुभ भावना आ जाए, ये संभव नहीं है इतना सहज। तो उसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए, इन एडवांस प्रिपरेशन चाहिए। तो वो कैसे होगा कि इस सारे शरीर की इंद्रियों को कर्म करने के लिए कौन ऑर्डर देता है? बुद्धि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि काम करती है। आपसे बात करते करते भी देख लो, यहां मक्खी आके बैठ गई तो तुरंत हाथ उठा के यहां मार देता है। तो बुद्धि, इसलिए हम कहते हैं किसी को मैड है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, डल इंटेलेक्ट एंड शार्प इंटेलेक्ट कहते हैं। और एक कहते हैं बुद्धिवान है, समझदार है। तो अब भी बाबा ने जब ज्ञान सुनाने के बाद हमें अपने आप को ट्रेनिंग देना है, बार बार समझाना है। क्या समझाना है? मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है, कितना भी गुस्सा भी कर रहा है, गाली भी देता है, कल बाबा ने बताया इंसल्ट भी करता है, लेकिन वो कौन कर रहा है? करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो आत्मा कहां थी? वो तो आत्मा परमधाम में थी, हम भी परमधाम में थे, हम भी उसी शिव बाबा के बच्चे हैं, वो भी उसी शिव बाबा का बच्चा है। ये इन एडवांस पहले से अगर बुद्धि को समझाते हो, आप अपने आप को समझाते हो, तो ये व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है, ये आत्मा नहीं करती है, उसके अंदर ऐसे संस्कार भरे हुए हैं, उसका ऐसा पार्ट है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो उसके अंदर ऐसे संस्कार भरे हुए हैं। ایسا اس کا پارٹ بنا ہوا ہے، وہ آتما نہیں کرتی ہے۔ آتما سچت آنند سوروپ پرماتما کی سنتان ہے، شبھ بابا کا بچہ ہے، پوتر ہے، اس کے انادی اویناشی ایک گن ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہر ایک کو اپنا اپنا رول ہے۔ یہ جب آدی کا اوریجنل گیان جو ہے، یہ ہمیں اپنے بدھی میں بھرنا چاہیے، اپنے آپ کو پڑھانا چاہیے، تب آپ کے اندر ایک بھاونا آتی ہے۔ اس سرشٹی پر جو بھی آتمائیں ہیں، جو بھی پارٹ بجاتی ہے، کوئی بھی دوشی نہیں ہے، نردوش ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا پارٹ بجا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ سے بات کرنا چاہیے، ارتھات بدھی کے اندر یہ ریکارڈنگ پہلے سے بھرنا چاہیے۔ جب تک بدھی کے اندر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سامنے والا دوشی نہیں ہے، یہ آتما کام نہیں کرتی ہے، اس کے اوپر 63 جلموں سے جو پربھاؤ پڑا ہوا ہے 5 وکاروں کا، وہ پربھاؤ کام کر رہا ہے۔ یہ جب آپ کے بدھی میں سمجھ میں آئے گا، تب سامنے والے کو آپ اس آتمک درشٹی سے دیکھتے ہو۔ آتما چمکتا ہوا نہیں دکھائی دیتی ہے، آپ کے بدھی کے اندر پتا ہے یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، شریر دکھائی دیتا ہے نا، آتما تو ایک ہی ہے نا، آتما استری پروش نہیں ہے نا، تو آتما پرم دھام سے آئی تھی نا، تو یہ سمجھ ہے۔ تو اسی پرکار سے یہ بھی سمجھ بھرنا چاہیے، بدھی کو ٹریننگ دینا چاہیے کہ سامنے والا دوشی نہیں ہے، اس آتما کے اندر اوریجنل یہ سنسکار ہے، یہ بعد میں سنسکار آدھا کلپ کے بعد بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اپنے آپ کو آپ سمجھاتے ہو، تو یہ گیان بابا نے دیا ہے، سب سے شریشٹھ گیان ہے یہ۔ اور سارے کلپ میں ہر ایک آتما کو اس سنگم پر ہی یہ سمجھ ملتی ہے۔ تب بابا نے بہت دفعہ کہا، اس گیان کے خزانے کو اویناشی خزانہ بناؤ، ارتھات اس کے پکے سنسکار بناؤ۔ پکے سنسکار کب بنتا ہے؟ سننے سے سنسکار نہیں بنتا ہے، صرف سن لیا، شرون سے کبھی بھی آچرن میں نہیں آتا ہے۔ لسننگ از ناٹ ایوری تھنگ۔ کھانے سے موٹھا نہیں بنتا ہے، کھانے کے بعد ڈائجسٹ کرنا چاہیے، ہجم کرنا چاہیے۔ سننے سے اپنے آپ آچرن میں نہیں آئے گا، کہتے سننے کے بعد سمجھ میں آیا، سمجھ کہاں ہے؟ بدھی کے اندر ہے۔ اس ہم کو سنتے بہت کچھ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدھی سویکار نہیں کرتی ہے کہ سامنے والا اتنا غصہ کرتا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے، اتنے گالی دیتا ہے، اتنا انسلٹ کرتا ہے، تو کیا اس کے پرتی آپ کے من کے اندر شبھ بھاونا آئیں گی؟ پوچھ لو آپ، اس آتما کے پرتی دیکھتے ہی آپ کے اندر شبھ بھاونا آ سکتی ہے؟ بابا کہتا ہے، گیان کہتا ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اس آتما کا کلیان ہو جائے، یہ سمبھو ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پہلے پوچھ لو۔ کئی چیزیں کرنی ہیں، تو یہ آپ اپنے آپ سے پرشن پوچھ لو، تب تک بابا کو یاد کرو۔
پریم سے بس دو گھڑی پربھو کا دھیان کیجیے، اپنی انتر آتما کو شانتی سے بھر لی، شانتی سے بھر لیجیے۔
تو آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ ایسا ویکتی آپ کے سامنے آتا ہے، تو دل سے ارتھات بدھی کے اندر یہ سمرتی جاگرت ہوتی ہے کہ اس آتما کو مجھے دعا دینی چاہیے، اس آتما کے پرتی شبھ بھاونا جاگرت ہو سکتی ہے؟
इधर मुझे एक बात याद आती है, एक विदेशी बहन ने, टीचर ने हमको 2 साल पहले एक प्रश्न पूछा। 2 साल पहले एक विदेश की बहुत बड़ी टीचर है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि किस व्यक्ति को, किसको आप कहते हो आध्यात्मिक व्यक्ति है, हु इज स्पिरिचुअल। तो 3 नाम लिया, क्या क्रिश्चियंस का धर्म गुरु है पोप, या हिंदुओं का धर्म गुरु है शंकराचार्य, या ब्रह्मा कुमारीज, किसको कहते हो, हु इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है। आप अपने आप से भी पूछो, हम ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, हाँ जानते हैं भी है, तो क्या आप अपने आप से कह सकते हो, पूछ कह सकते हो कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। तो उसका डेफिनेशन क्या है, किस व्यक्ति को कहते हैं इनको बुखार आया है, कैसे पता चलेगा आपको, तो उसके लिए थर्मामीटर बनाया है ना, तो थर्मामीटर लगाओ तो पता चलता है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, कितना बुखार है, तो उसका मेजरमेंट है। तो ऐसे किस व्यक्ति को कहते हो ये व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं है, किस आधार से कहेंगे आप, हु इज स्पिरिचुअल। तो आप, उन्होंने 3 नाम लिया, तो आप अपने आप से पूछो, तो उसका भी एक डेफिनेशन है, डिग्री है, थर्मामीटर है, इस व्यक्ति को आप कह सकते हो, तो वो थर्मामीटर लगाओ तो पता चलेगा हाँ ये है या नहीं है। वो कौन सा थर्मामीटर है, व्हाट इज दैट मेजरमेंट, कैसे मेजर करेंगे। तब हमने उनको कहा, आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसके सामने कुछ भी आता है, चाहे अमृत आ जाए, चाहे विष भी आ जाए, चाहे महिमा आ जाए, चाहे बद्दुआ भी आ जाए, कुछ भी सामने आता है उसको स्वीकार करता है। क्यों? उसके पास ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान कहता है हर एक कर्मों का फल है, और हर एक कर्म जो फल है और वो निश्चित है। कभी आप कहेगा हमको पता नहीं है, तो कौन माफ करे, हर एक कर्मों का फल है, हर एक कर्म हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। आत्मा इस शरीर के इंद्रियों के द्वारा इस शरीर में प्रवेश करने के बाद एक एक सेकंड जो भी कर्म करते हो, एक एक सेकंड, एक एक कर्म हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और हर एक कर्म का फल निश्चित है। उसको कहा देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। कौन माफ करे, कैसे करे, कर्म हम करे और बाबा माफ करे, तो हर कर्म अंदर रिकॉर्डेड है। तो पता है हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, जो भी समस्या आई है, कोई जो इंसल्ट करता है, गुस्सा करता है, वो मैड नहीं है, वो इनको पर गुस्सा नहीं कर रहा है, मेरे पर क्यों करता है, इनको इंसल्ट नहीं करता है, मुझे करता है क्यों, अगर उसने करना चाहे तो सभी को पर करना चाहिए, तब वो कहेंगे ये ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं इनका, है ना, इनको मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहिए, है ना। तो अगर सभी पर करता है वो, अगर मेरे पर भी, मेरे ऊपर ही करता है तो क्यों करता है। जरूर हमने इनसे 100 रुपया लिया था तो लेने के लिए आएगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दूसरे जन्म। शरीर चेंज करने से आत्मा चेंज नहीं होती, आत्मा अविनाशी है, ये हम भूल जाते हैं। हमने कहा शरीर चला गया, सब चला गया, नहीं गया है, ये कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े पहनता है, एक सेकंड के अंदर दूसरा कपड़ा पहनता है, तो ये शरीर खत्म हो गया तो इसके अंदर आत्मा खत्म नहीं हुई, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो अनादि अविनाशी है, चलता रहेगा। ये शरीर खत्म होने से आत्मा खत्म नहीं हुई है, ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान बाबा ने दिया, नहीं तो हमारे अभी तक दृष्टिकोण जो है वो भौतिक है, शरीर को देखते हैं हम, सिर्फ
शरीर को देख करके शरीर का जो पोस्चर है उसी को देखते हैं, यही समझते सब कुछ है। नहीं, ये आज है कल परिवर्तन हो जाएगा, ये शरीर चला जाएगा दूसरा शरीर आएगा। तो ये अगर स्मृति है तो भौतिक को देखकर हम निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये शरीर को चलाने वाले आध्यात्मिक शक्ति है उसके ऊपर हमारी दृष्टिकोण रहता है। ये आत्मा अविनाशी है, एक शरीर छोड़ने से खत्म नहीं हुआ। अगर हमने कुछ लिया तो ये खत्म नहीं होगा, ये देना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये शरीर चला गया दूसरे शरीर में, नहीं तो तीसरे शरीर में देना है, ऋण है, ये ऋण खत्म नहीं होगा। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में लेने आएगा। तब बाबा ने कहा, बहुत जन्मों के हिसाब किताब है और सारे कल्प के अंदर यही एक समय है संगम। सारे कल्प का हिसाब किताब चुकतु करना चाहते हो कि ऐसे रखना चाहते हो आप, कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, कि जाते समय कुछ ले जाना चाहते हो, तो दोनों है। तो तब बाबा ने कहा, शिव बाबा क्या देता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देता है। आप कहेंगे हमने ज्ञान सुन लिया तो विकर विनाश हो गया, जीवन मुक्ति मिल जाएंगी? नहीं, कहीं बाबा के बच्चे ज्ञान सुनने के बाद भी मुक्ति में जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। ज्ञान सुनने के बाद भी आचरण में कितना लाया? तब बाबा ने कहा, तीन प्रकार के जमा का खाता है। तो वो कितना किया है, तो हाथ भरपूर होके जाएगा तो भरपूर आएगा, सत्युग में आएगा। अगर ज्ञान सुनने के बाद भी कुछ जमा नहीं किया तो कैसे जाएगा, जाते समय कैसे जा रहा है? तो खाली हाथ जाएगा तो परमधाम मुक्ति में चला जाएगा, वहां थोड़ा दिन रहना पड़ेगा, एक जन्म रहेगा, दो जन्म रहेगा, दस जन्म रहेगा, पच्चीस जन्म रहेगा, उसके बाद आएगा ना। तो इसलिए कहा, तो देख लो आप कि ज्ञान सुनने से हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसको कर्मों की गति जानता है। मेरे सामने जो भी परिस्थिति आई, जो भी व्यक्ति आया, क्यों आया, यही क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, तो ये मेरे कर्मों का फल है। कुछ मैंने दिया था, कुछ लेने के लिए आया है। आज ये गुस्सा कर रहा है, कुछ बोल रहा है, क्यों कर रहा है? कुछ मैंने दिया था, अभी ले करके अगर आपने एक शब्द भी बोला तो 5000 साल के लिए दोबारा आपने रिकॉर्ड कर लिया, दोबारा आपने कर्म बंधन बना दिया। अगर बुद्धि के अंदर ये स्मृति है, मुझे ये लेके अभी खत्म करना है, हिसाब किताब चुक तो करना है, तब ये भावना वाला नहीं है, तो ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर है, हाँ सिर्फ भावना है। तो यहां समझ से भावना है, समझ बुद्धि। तब बाबा ने कहा, भक्ति में कहते भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, हमारे पास नहीं है, भगवान देगा। अब बाबा ने आके कहा, बच्चे कल कहा मन और बुद्धि दोनों परम धाम में बाबा के साथ जोड़ दो, यही आपके साथ रहने वाली शक्ति है। सब कुछ करते हुए भी आपके साथ क्या रहेगा कल? मन बुद्धि को परम धाम में जोड़ दो, एकाग्र करो, वो शक्ति चाहिए, वो आपकी अमानत है। सारे कल्प रहेंगे, बाकी सब ये अमानत आपका नहीं है, ये हिसाब किताब लेना देना पड़ेगा, लिया है तो देना पड़ेगा। तो सामने जो भी परिस्थिति आती है, ये मेरे कर्मों का फल है। अगर आपने कहीं बीज बोया है तो उसके फल लगे तो खट्टा लगे तो कौन खाएगा? आपने बीज बोया था तो आपको ही खाना पड़ेगा, तो हंसते हंसते खा ले लो उसको। अगर दुख भी आया, समस्या भी आया, ये मेरे कर्मों का फल है और मुझे लेकर के इसको खत्म करना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, इसको अगले जन्म के लिए रखना नहीं है,
ले जाना नहीं है क्योंकि ये अंतिम जन्म है, तो वो स्वीकार करने की शक्ति चाहिए। और वो आती है तब बाबा ने कहा अमृत वेले योग चाहिए। और योग भी रूरिहन वाला नहीं, भक्ति वाला नहीं। बाबा आप प्यार के सागर हो, हाँ बाबा को पता है मैं प्यार का सागर हूं। हाँ बाबा आप आनंद के सागर हो, भक्ति में आदत है ना, भगवान की महिमा करने की आदत है, तो वही रिपीट होता है। बाबा के सामने बैठे, बाबा आप प्यार के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, बाबा आप बहुत अच्छे हो, ये भक्ति वाला हो गया है ना। तो इसके साथ बाबा विधि बताता है कैसे मन और बुद्धि के अंदर ये रिकॉर्डिंग्स है। इसलिए बाबा कहते हैं विधि बनो, पहले आत्मिक स्मृति को जागृत करो। आत्मा के अंदर पुण्य आत्मा पाप आत्मा शरीर नहीं कहा है, और जब तक आत्मिक स्मृति नहीं है तो आपके संकल्प ऊपर नहीं जाते हैं, आपके संकल्प इधर उधर जाते हैं। ऊपर जाना है तो आत्मा के संकल्प पॉजिटिव होते हैं, हल्के होते हैं, प्योर होते हैं, तो वो ऊपर जाते हैं। और बाबा तक पहुंचना है आपका संकल्प तो आत्मिक स्मृति चाहिए। तो पहले 5 मिनट जब योग में बैठते हो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मा का चिंतन करो, मैं कौन, मैं किसकी संतान हूं। तो ये अगर है तो आपके अंदर आत्मिक स्मृति जागृत होती है और आत्मा को आत्मा त्रिकालदर्शी है, जानती है ये मेरे सामने जो व्यक्ति आया गुस्सा कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे स्वीकार करना चाहिए, ले लेना चाहिए और समा लेना चाहिए। तो इसलिए कहा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो विष भी आने दो, महिमा भी की किया किसने तो फूलता नहीं है, खुश नहीं होता है, और किसी ने ग्लानी करने से दुखी नहीं होता। इसलिए कल बाबा ने कहा किसी ने कुछ दुख दिया तो लेंगे, गलत एप्पल दिया आपको सड़ा हुआ ले लेंगे आप, अभी लेते हैं देखते हैं फिर फेंक देंगे है ना, तो पहले दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे अभी क्या आपके कान आपको बताएंगे कि ये गलत बात है सुनो नहीं, आपको पूछ के कोई अंदर गुस्सा नहीं आए। अगर कोई गुस्सा करता है कुछ बोलता है वो बिना पूछे आपके अंदर घुस जाता है। क्यों, हम स्वराज अधिकारी अभी तक नहीं बने, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो ये अपने आप भी नहीं होगा। तो अपने अंदर ऐसे प्रोग्राम बनना चाहिए, बुद्धि को समझाना चाहिए, पहले से तैयारी करो कि अगर आज के बाद आराम से योग में बैठते हो, कभी भी बैठो और अपने आप से बात करो, अगर मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा और बहुत गुस्सा करेगा, बदनाम करेगा मुझको, मेरे ऊपर कलंक लगाएगा, मेरी कोई चीज लेके जाएगा, बहुत नुकसान करेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, सारे प्रश्न पूछो, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो बुद्धि जवाब देंगे। उस दिन बाबा ने कहा था बच्चे सारा विश्व भी आपके ऊपर गुस्सा करता है, 100 दफा भी किसी ने गुस्सा किया, 1 दफा गुस्सा आपको करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए, 1 दफा करना चाहिए, 2 दफा नहीं चलेगा, 1 दफा किया तो है ना, ये पूछ लो आप। तो बुद्धि कहेंगे नहीं, बाबा ने उस दिन कहा था 100 दफा भी गुस्सा किया तो भी आपको नहीं करना है। कौन कह रहा है आपको, ये स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है। अगर उसने सामने वाले ने कहेंगे बाबा कलो पत्थर मारेगा, हाँ बाबा आपका वॉचमैन है, बाबा आपकी रक्षा करेगा, कि बाबा ने जब कहा आपने सुना तो बाबा जिम्मेवार है, बाबा आपने कहा तो चुप रहो मैं चुप रहा, देखो आज उसने थप्पड़ मारा मुझको पत्थर मारा, वो बाबा जिम्मेवार है। बाबा ने कहा मैंने कहा है मैं और ड्रामा देख लूंगा, मैं भी देखेगा और ड्रामा भी देखेगा, 2 शब्द यूज किया बाबा ने। तो अगर बाबा ने कहने के श्रीमत को हम यूज करते फिर भी कुछ हुआ, कभी हमारे मन में डाउट होता है अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगा, बुद्धि तर्क करती है, अनुभव है, लेकिन आज हमारे साथ कौन है,
यह विश्वास चाहिए। हमारे साथ हमको ये कहने वाला कौन? कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान। ये विश्वास अगर है तो ज्ञान बुद्धि स्वीकार करती है और बुद्धि के अंदर समझ में आता, हां ये स्वयं भगवान कहता है तो मुझे सहन करना चाहिए, सामने विष भी आया पी लेना चाहिए तो अमृत बन जाएगा। मीरा को विष दिया, हम उदाहरण बताते हैं औरों को, कहानी सुनी आपने, औरों को कहानी सुनाते हैं, क्या हमारे सामने अगर विष आया मैं पी सकता हूं? पूछ लो आप, कहानी बहुत है, उदाहरण है। तो ये हरेक को अपने आप से पूछना है, अपने बुद्धि को ट्रेनिंग दे दो, क्या कल मेरे सामने विष आया तो मैं पी सकता हूं, मेरे पास शक्ति है? तो बाबा ने कहा कि आदि से अंत तक पवित्रता की पर्सनालिटी की परसेंटेज देख लो, मैं कितना परसेंटेज हूं, आदिकाल में कितनी परसेंटेज थी और अंत समय में मेरे अंदर पवित्रता की जो पर्सनालिटी है, रॉयलिटी है। एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि स्वयं भगवान ब्राह्मण बच्चों को पवित्रता की पर्सनालिटी और पवित्रता की रॉयलिटी भरता है। 2004 की मुरली है, अवैक्त मुरली में बाबा ने कहा स्वयं भगवान की ब्राह्मण बच्चों के अंदर की पवित्रता की पर्सनालिटी और पवित्रता की रॉयलिटी की शक्ति भरता है। अगर हमने विधि पूर्वक योग करते हैं, विश्वास है, अभी भी दो तीन पहले दिसंबर में बाबा ने यह भी कहा, गृहस्थ में माताएं सभी परिवार वाले पवित्र किस आधार से रहते हो? दुनिया वाले कहते हैं कि आग और कपूस दोनों साथ में रह सकता है? हां, अभी बाबा के बच्चे जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में पवित्र कैसे रहते हो? किसकी शक्ति है ये? ये शुभ बाबा बच्चों को, गृहस्थ में रहने वालों को भी पवित्रता की सकाश देता है। इस बाबा की शक्ति से गृहस्थ में रहते हुए भी, पति पत्नी रहते हुए भी पवित्रता की शक्ति बाबा देता है। उसकी शक्ति से, हमारी मेहनत नहीं है, हमारी समझ से नहीं है, तो ये भगवान देता है, काम कर रहा है, उसके बल से चल रहे। ये विश्वास और प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं आप, कहां से शक्ति आई है? तब का अगर आपके अंदर ये शक्ति है तो आपको लगता है ज्ञान समझ में आया, बुद्धि के अंदर समझ है, तो अपने आप से बात करो, कल मेरे सामने मेरा नजदीक वाला व्यक्ति अगर मेरे से ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, तो क्या करना चाहिए? पहले से बुद्धि के अंदर निर्णय करके अनुभव के रूप में भर दो। जब कभी आ भी सकता है परिस्थिति, नहीं भी आ सकती है, अगर आ गया तो तुरंत बुद्धि उस समय वो काम करेंगे, हां ये अनुभव भरा हुआ है, आज वो परिस्थिति आ गई, बुद्धि अपने आप समेट लेती है, सहन कर लेती है, क्योंकि तैयार है। इसको बाबा ने कहा हिम्मत आपकी और मदद बाप की है। तो हिम्मत हमारे अंदर कहां से आएंगी? जब रोज ज्ञान सुनते हो, सुन के वहां छोड़ो नहीं, तो उसका मनन चिंतन करके, अनुभव करके, प्लानिंग करके अपने अंदर स्टोर करो। कल सवेरे दूसरा पॉइंट है, जैसे आज सवेरे बाबा ने मुरली में सुनाया, कौन बताएगा? एक बहुत सुंदर पॉइंट सुनाया, नया आज लायक है, इस मुरली के संदर्भ में सुनाया, और अव्यक्त मुरली कल मुरली के अंदर भी था और आज भी सुनाया। आज बाबा ने कहा कि सारे विघ्नों का मूल कारण क्या है, बहुत सुंदर पॉइंट सुनाया आज, मुरली के अंदर भी था कल भी, सारे हमारे जीवन में जो सारे विघ्न आता है उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? विपरीत भावना, औरों के प्रति प्रीत भावना नहीं, प्रीति नहीं है, क्योंकि आत्मा को नहीं देख रहे हम, सामने वाला वेश काला गोरा लंगड़ा वो दिखाई दे रहा है, भाई बहन मित्र दुश्मन वो दिखाई देता है, एक है प्रीत बुद्धि, एक है विपरीत बुद्धि। आज बाबा ने कहा कि सारे विघ्नों का मूल कारण है विपरीत बुद्धि है, प्रीत नहीं है। सामने वाले के व्यक्ति को आत्मिक स्मृति नहीं, आत्मा नहीं है, शरीर दिखाई दे रहा है, ये बहन जी है, ये भाई जी है, ये बुजुर्ग है, ये छोटा है, तो शरीर के रूप में अभी भी दृष्टि है, समझ वही है। तो इसके लिए हमारे बुद्धि के अंदर ज्ञान सुनने के बाद भी समझ में अभी तक आचरण में नहीं आ रहा है, तो हर एक आत्मा के प्रति प्रीत चाहिए। ये आत्मा शिव बाबा का बच्चा, चाहे कितना गरीब है, कुछ भी नहीं, लंगड़ा है, अंधा है, बहुत काला है, हम बहुत सुंदर गोरा है वो अच्छा लगता है हमको, है ना, कि सुंदर दिखाई देता है, बहुत काला है, बहुत बीमार है, वो कौन है? वो रावण का बच्चा है, वो दूसरी दुनिया से आया था, नहीं वो भी तो परमधाम से आया ना, बहुत पापी है, बहुत पाप करता है, बहुत गलत खराब है, वो भी कहां से आया था, कहां से आया, वो दूसरी जगह से आया, त्रेता से आया, द्वापर से आया, कहां से आया, वो भी तो परमधाम से आया था ना, वो भी शिव बाबा का भी बच्चा है ना। ये जब ज्ञान है ना, ये बुद्धि के अंदर समझाना पड़ता है अपने आप को कि कितना भी गलत हो, कितना भी क्रोध कर रहा है, वो कौन है कर रहा है। जब बुद्धि को समझाते हो तब आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है उसको आप स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, और अगर आपके अंदर रखेंगे आप तो डिप्रेशन आ जाएगा। तनाव अंदर रखना नहीं, आध्यात्मिक में वो बता रहा था, आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है जो सहन करता। बाबा ने कल कहा कि आपका टाइटल क्या है, कौन हो आप, सहनशील आत्मा हो, है ना, आपका टाइटल क्या है, सहनशील देवता हो और देवी हो। आध्यात्मिक रास्ता ये कहता है, टिट फॉर टैट नहीं है, उसने एक बोला तो मुझे एक बोलना चाहिए, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, समझदार नहीं है, स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं है, ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, समझ नहीं है कि मेरे सामने जो परिस्थिति आया उसको मुझे स्वीकार करना है और समा लेना है, समाने की भी शक्ति चाहिए, तो वो योग से आती है। जितना आपके अंदर ज्ञान स्पष्ट है तो ज्ञान स्वीकार कराता है, और स्वीकार करने का कभी कभी हम बड़े हैं, कोई आप बोल नहीं सकते हो, चुप रह देते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन वो फिर आपके अंदर डिप्रेशन लाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, क्यों, अंदर समाया है, अंदर ही है वो, गया नहीं कहीं। तो कल कोई मिल जाएगा तो उसके सामने उल्टी करेंगे, सारी हिस्ट्री सुनाएंगे उसको, क्योंकि अंदर है, आपको खाता रहेगा, किसी को सुनाते रहेंगे। पर चिंतन निंदा क्या है, कहां से आई है, जो आपने सुनी अंदर समाई है। तब बाबा ने कल कहा था, किसी ने किचड़ा अगर अंदर भर के रखा तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या भरा हुआ है, किचड़ा भरा हुआ है तो सुख देगा। तो जो हम सुनते हैं अंदर रखेंगे तो वो डिप्रेशन करेगा, तो इसलिए बाबा ने कहा समाने की शक्ति चाहिए, संभालो, भूल जाओ। तो वो शक्ति कैसे आएगी, एक ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए। तो योग की शक्ति अगर है तो आप समा लेते हो, और ज्ञान अच्छी तरह से समझा हुआ है, समझ में आया है तो सहन कर लेते हो। ये दोनों अगर नहीं है तो ये आपको आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, नोट भी करते हैं और यहां ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना, तो उसको आध्यात्मिक नहीं कहते हो। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है कि सुनने के बाद मनन चिंतन करके अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को समझाओ, अनुभव के रूप में भरो, और कल मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए इन एडवांस तैयारी करो। ऐसे नहीं परिस्थिति आने के बाद हम कुछ करेंगे, नहीं होगा, उस समय आप बेहोश हो। जो परिस्थिति सामने व्यक्ति आया वो व्यक्ति आपके पर वार करता है, उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो पहले से प्रिपेयर करके जो बुद्धि को समझाया है, ऐसा व्यक्ति आ जाए, अगर मुझे किसी ने कुछ किया, बाहर जाते समय आपका चप्पल किसी ने पहन के चला गया, तो क्या होगा, कितने विचार चलेंगे, है ना, उसके लिए मन में क्या क्या विचार चलता है आप देख लो, एक सिंपल चीज। तो पहले से तैयारी करो, अगर चप्पल कोई पहन के गया, कमरे में मोबाइल रखा था, पर्स लगा रखा था, कोई उठा के लेके गया, कुछ भी हो सकता है। कल बाबा ने कहा 3-4 मुरली से, बाबा हर मुरली में एक शब्द बार बार रिपीट कर रहा है, और कल और एक शब्द यूज किया, अचानक शब्द को हल्के रूप में लेना नहीं, वो बाबा हर मुरली में कहता है, रोज कहता है बाबा, इसको हल्का नहीं लेना, अचानक जो शब्द बाबा ने कहा उसको हल्के रूप में लेना नहीं। हर कर्म में, जब कर्म क्षेत्र में जाते हो, हर कर्म के अंदर ये याद रखो, स्मृति में रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा, बाबा ने पहले अचानक और एवर रेडी ये बार बार रिपीट किया हर मुरली में, लेकिन कल एक शब्द ऐड किया कि इस शब्द को हल्का नहीं लेना। बाबा हर तरह रोज कहता है, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, इसको हल्के रूप में लेना नहीं, अचानक और एवर रेडी। तो जब कर्म क्षेत्र पर उतरते हो, कोई भी कर्म करो, सब्जी बा काट रहे हो, अचानक चाकू हाथ को लग करके अंगुली कट सकती है, अचानक कुछ भी हो सकता है, सब्जी काट रहे थे आप, काटते काटते अंगुली भी कट सकती है, अचानक अरे क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हाँ बाबा ने बताया था, ये अचानक हो गया है, सहन कर लो, चुप रहो, उस समय स्मृति जागृत हो जाएंगी। अचानक चलते चलते पर्स गुम हो सकता है ना, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम तैयार है, सहन करने के लिए तैयार है, अचानक किसी ने गुस्सा किया, गाली दिया, कुछ भी किया, तैयार है हम सुनने के लिए। ये पहले से तैयार करो, अपने आप को पढ़ाओ। इसको कहते हैं कि राजयोग, क्या है ये, कि सेल्फ ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेनिंग दे दो, अपने आप को पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ, मुझे क्या करना है, तब का वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। और इस प्रकार अपने आप को तैयार करते हो तो किसी पर दृष्टि जाती है तो आपको लगता है बाबा ये शुभ बाबा का बच्चा है, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको इसका आप कल्याण करो, बाबा इसको पवित्रता की शक्ति दे दो, ये अपने आप दुआ निकलती है। ऐसा नहीं, देखो इस व्यक्ति ने कल कितना गुस्सा किया था, इसने मुझे परसों ऐसे कहा था, तो ये कहां है, अंदर किचड़ा भरा हुआ है, ये आपको शांति नहीं देगा, ये योग करना नहीं देगा, मुरली सुनी वो मुरली अंदर रहेंगी नहीं। तो तब आप कहते हो मुरली सुनते हैं याद नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, एक खुर्ची पर तो एक ही व्यक्ति बैठेगा ना, दो व्यक्ति तो नहीं बैठेंगे ना, पहले से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन है वो, देखो इसने मुझे कितने परेशान किया, कितना गुस्सा किया, कितना नुकसान किया, वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दूसरा कैसे बैठेगा, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। योग में बैठो तो बुद्धि योग ऊपर नहीं जाता है, इधर उधर जाता है। तो आप पूछ लो अपने आप से कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति है कि साधारण व्यक्ति है, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं है। तो ज्ञान सुना है तो ज्ञान क्या कहता है, बाबा बहुत दफा कहता है कि माया आएंगी, माया और कुछ नहीं है, हमने किए हुए कर्म, बहुत आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, वो बहुत लोगों से हमने ऋण लिया था, वो मांगने आएंगे ना कि छोड़ देंगे आपको, छोड़ देंगे, कोई छोड़ता नहीं है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से, कई बीमारी के रूप में आएगा, कोई इंसल्ट करने के रूप में आएगा, कोई गुस्से के रूप में आएगा, कोई आपकी चीज चोरी करके ले जाएगा, ये सब भिन्न भिन्न रूप है हमारे किए हुए कर्मों का फल के रूप में हमारे सामने आते हैं, आएंगे जरूर, इसी को बाबा माया कहता है, अलग माया ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे। तो ये अपने आप को पहले से पढ़ाओ, प्रिपेयर करो, ये कुछ भी हो जाए हम तैयार हैं। कल ट्रेन में जाने के लिए जा रहे थे, जाते जाते ट्रेन मिस हो गई, कोई अर्जा नहीं, जाने दो, कल जाएंगे, क्या होगा, क्या हो, कल जाते जाते ट्रेन में सामान रह गया, आप नीचे रह गए, उसके लिए भी ना एडवांस प्रिपेयर करो, हाँ हम तैयार है कुछ भी हो जाए। इसको कहा एवर रेडी, हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए। तो इन एडवांस तैयार करो, बुद्धि को ये पढ़ाओ, हम सबके लिए तैयार है। क्यों क्यों तैयार है, कि हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे, हमारे पास सर्वशक्तियां है। तब बाबा ने कहा साइंस क्या करता है, रोज प्रयोग, नया नया प्रयोग करता रहता है। कल के मुरली में सुनाया, तो आपके पास शांति की शक्ति है, शांति की शक्ति अर्थात योग करते हो, बाबा को याद करते हो, तो वो शक्ति है, उस शक्ति का अपने ऊपर, अपने प्रकृति के ऊपर प्रयोग करते रहो। समझ में आ गया, तो योग करते हो, अपने ऊपर प्रयोग करते हो, अपने आप को समझाने के लिए उपयोग करो। जैसे अपने पर करते हो तो आदत बन जाएंगी, तो औरों के ऊपर भी कर सकेंगे। तो किसी को भी देखते ही आपको आएगा इनको सकाश देना चाहिए, इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा भी पहले, ब्रह्मा बाबा भी अमृत वेले सबको सकाश देता था, तो औरों को साक्षात्कार हो जाते थे। तो वो कब होगा, पहले आप इस स्मृति को जागृत रहना चाहिए हमारे अंदर, कि मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूं और शिव बाबा ने मुझे ये श्रीमद दिया है, ये ज्ञान सुनाया है, इसको मुझे यूज करना चाहिए। इनको करना चाहिए नहीं, वो करे न करे मुझे करना है, ये याद रहे। तो इसको बाबा ने एक साध, एक ही शब्द है कि संपूर्ण पवित्रता क्या है, किसी को भी देखते ही, चाहे किसी ने गुस्सा किया, गाली दिया, तो उनका पार्ट उसने प्ले किया, वो करेगा, मुझे क्या करना है, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण होना चाहिए। ये अगर आपके मन से आता है तब कहेंगे कि आपके अंदर, आत्मा के अंदर पवित्रता की स्मृति है, मैं पवित्र आत्मा हूं, और सामने वाले को देखते हो आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से देख रहे हो आप, तो ये पवित्रता की पर्सनालिटी और ये रॉयलिटी अपने आप आपके आचरण में। नहीं तो देखा मनुष्य की आत्मा के अंदर इच्छाएं बहुत है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएंगी कि भगवान हमें शक्ति देता है। तो एक बात को याद रखो कि संपूर्ण पवित्रता तभी आएंगी, औरों को दुआ तभी देख सकेंगे, शुभ भावना शुभ कामना तभी आ सकेंगी, कि अपने आप को पढ़ाओ। मुरली बाबा ने दिया कल, आज सबको प्रिंटेड मिली है, कल आराम से बैठो सवेरे मुरली योग के बाद, अपने आप को अच्छी तरह से पढ़ो, बाबा ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, क्या करना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, ये तो ये प्रश्न करो, संपूर्ण पवित्रता मुझे, मेरे अंदर कैसे आएंगी, क्या मैं दुआ हरेक को दे सकता हूं, पूछ लो आप, क्योंकि आपको करना है, बाप सुनाने वाले ने, बाबा ने तो सुना दिया है, तो पूछ लो क्या मैं कर सकता हूं, कर सकते हैं, पूछ लो। यह है संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी। अगर यह हमारे आचरण में आ जाए तब बाबा ने कहा यही रॉयल आत्मा, यही सत्युग में आएंगी, ऐसी आत्माएं चाहिए, ऐसे संस्कार यहां भरना चाहिए। ज्ञान सुनने से सत्युग में नहीं आएंगे, तो ज्ञान सुनने के बाद ऐसे संस्कार अंदर भरना चाहिए। तो संस्कारों से जन्म है, ज्ञान से जन्म नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान सुना है सीधा परमधाम में जाएंगे, मुक्ति में जाना पड़ेगा। तो ज्ञान सुनने के बाद संस्कार ऐसे बनाएंगे, सब परिस्थिति आएंगी, हर एक गुस्सा करेगा, इंसल्ट भी करेगा, क्योंकि कौरव और पांडव, ज्ञानी और अज्ञानी, संपूर्ण ब्राह्मण और अधूरे ब्राह्मण, सभी प्रकार के मिक्सड है ना, सभी सत्युग में नहीं आएंगे, थोड़े से आएंगे, तो उनकी चलन अपनी होंगी, अपने स्वभाव संस्कार होंगे। तो तब कहा लोग कहते आध्यात्मिक रास्ते पर चलना बहुत कठिन रास्ता है, इसलिए कोई चलते नहीं इस रास्ते पर, बहुत गिने चुने चलते हैं। पांडवों में भी देख लो सिर्फ पांच ही निकले हैं। लोग कहते तलवार के धार पर चलने का रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना तलवार के धार पर चलना है ना, तो इसलिए बहुत कठिन रास्ता ऐसा लगता है। क्यों? ज्ञान सुनने से समझ में नहीं आती, इतनी हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, अपने आप को समझा नहीं सकते, कठिन लगता है, और भौतिक दिखाई देता है, भौतिक को जल्दी स्वीकार करते हैं हम, ठीक है। इसलिए पवित्रता अर्थात संपूर्ण दुआएं देना है, शुभ भावना औरों के प्रति रखना, तो अपने आप से पूछना क्या हम आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल है, तो हम सहन कर सकते हैं और समा सकते हैं, तब हम आध्यात्मिक, हमारे अंदर ज्ञान और योग की दोनों शक्तियां हैं, ठीक है। ओम शांति।
Thank you.